गृहम् आनीतम् आहूय प्रह्लादं दैत्यजाजकः प्रशस्यः श्लक्ष्मया वाचा समपृच्छन्त सामभी शब्दार्थ गृहम् अध्यापकों संध तथा मर्क के घर तक आनीतम लाया गया आहूय फुकार कर प्रह्लादम प्रह्लाद को दैत्यजाजक हिरण्यकशिप के पुरोहित प्रशस्य शांत करके श्लक्ष्मया अत्यंत नम्रता पूर्वक वाचा वाणी समपृच्छन्त प्रश्न पूछा सामभि अत्यंत अनुकूल शब्दों से अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब हिरण्यकशिपु के सेवक बालक प्रह्लाद को गुरुकुल वापस ले आए तो असुरों के पुरोहित संध तथा अमर्क ने उसे शांत किया। उन्होंने अत्यंत मृदु वाणी तथा स्नेह भरे शब्दों से उसने इस प्रकार पूछा। तात्पर्य संध तथा अमर्क असुरों के पुरोहित थे। वे प्रह्लाद महाराज से यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वे कौन से वैष्णव हैं जो उसे कृष्ण भावना में का उपदेश देने आते हैं। उसका मंतव्य उन वैष्णवों के नामों का पता लगाना था। प्रारंभ में उन्होंने बालक को डराया धमकाया नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर ही हो सकता कि वह असली दोषियों के नाम न बताता। अतएव उन्होंने अत्यंत मृदु तथा शांत भाव से इस प्रकार पूछा। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमः त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्रयते नमः। अवतीर्णौ स्वकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दो भ्रातरो भजे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय जो कि सातम स्कंद की पांचम अध्याय जो हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रह्लाद महाराज के महिमा की वर्णन की जा रही है। इस अध्याय के पांच नंबर श्लोक विशेष महत्वपूर्ण था और जिसकी चर्चा कई क्लासों में अन्य अन्य वक्ताओं के द्वारा की गई है। जैसे ही प्रह्लाद महाराज की उक्ति था तत्साधु मन्ने असुर वर्ज्य देहिनां सदा समुद्विग्न धिया धियाम असत्ग्राहात् हित्वात्मपातं गृहंधकोपं वनंगतो यत् हरिमाश्रयेत। प्रह्लाद महाराज ने उत्तर दिया था कि असुर श्रेष्ठ दैत्यराज हिरण्यकशिप को संबोधित करते हुए कहे थे, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्टार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरण में शरण ग्रहण करें। तो इसे प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के अनुवाद ऐसे ही किए हैं। और ये श्लोक जब प्रह्लाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के प्रति कहे तो छह नंबर श्लोक में हम देखें कि हिरण्यकशिपु ने ये बात को सुनकर हंस दिया और कह कि बालमति बचपन में छोटे बच्चों की मति को ऐसे ही बिगड़ा जा सकता है। वो सब सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, उनको जो जैसे सिखा देता है वैसा ही सीख जाते हैं। तो इसलिए सुला के इसलिए अपने शत्रु मानता था हिरण्यकशिपु, किसी को भगवान विष्णु वो शत्रु मानता था, इसलिए शत्रु पक्ष के प्रति ही अपने पुत्र प्रह्लाद का स्वामी भक्ति देखलाने की स्थिति को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। थोड़ा मुस्कुराते हस्त दिया मुख में बाह्य रूप से, लेकिन अंतर में बहुत क्रोधित रहा। लेकिन उसकी टीचर दोनों शिक्षक उस दिन तो उपस्थित नहीं थे, वो अपने अपना अपने घर में थे, लेकिन फिर भी अन्य लोगों के द्वारा अन्य जो कुछ लोग उनके माध्यम से प्रह्लाद को फिर वापस भेजा उनके पास। लेकिन वो बड़ा सतर्क कर दिया इनको, कहा कि इनको बोलो टीचर मैं शिक्षकों को बोलो तथा बहुत सावधानी से इसके प्रति नज़र रखो। किसके प्रति? ये बालक के प्रति। हाँ कि असुरों बालकों के गुरुकुल में जहाँ पर शिक्षा दिया जाता है, ये विशेष रूप में प्रह्लाद जहाँ पर शिक्षा पाता है, इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो जिससे इसकी बुद्धि छद्मवेश में घूमने वाले वैष्णव के द्वारा अधिक से प्रभावित न हो जाए। हैं ये जैसे वैष्णव की संग न कर पाए, किसी वैष्णव ने इसको ऑलरेडी इसका माइंड में कुछ घुसा दिया है, अभी वो मेरा शत्रु के अर्चना भक्ति के लिए भक्ति के बारे में कह रहा है। तो इसलिए हिरण्यकश्यप ने बड़े सावधान से ऐसा ही इनको उपदेश दिया। प्रभुपाद जी कहते कि हमारे कृष्ण भावना में का आंदोलन का जो प्रचार प्रसार ऐसा ही हो रहा है, आजकल की जो समाज पूरा ये हिरण्यकश्यप की है, जो पुरोहित थे संधम और की शिक्षा जैसे ये लोग सब दे रहे हैं, और आसुरी साम्राज्य में है आइए, और प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव उपदेश के विरुद्ध रहता है, कोई इसी को ग्रहण करना तैयार नहीं रहता। इसलिए कृष्ण भावना में वर्तमान युग के असुरों को तनिक भी नहीं पाता है, आज भी स्थिति ऐसा ही है। और सभी लोग क्या जो ही वे किसी को केसरिया वस्त्र धारण किए, गले में माला डालते तथा मस्तक पर तिलक लगाते देखते हैं कि वे तुरंत कुपित हो जाते हैं। वो तो महान कृष्ण हिरण्यकशिपु था, लेकिन आजकल वो छोटे छोटे हिरण्यकशिपु भी है दिखाई पड़ते, क्योंकि जो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते हैं तो वो सो फिर उसी के अनुजाई माना जाता है कि इसका हिरण्यकशिपु की फलवार है, हैं? तो इसलिए आज भी हमें समाज में ऐसे छद्म वेश धारण करके जाना पड़ता है। जय श्री श्री गौरनीता की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। इसलिए कृष्ण भावना में के प्रचार करने के लिए हमें भी ऐसे छद्म वेश धारण करके भी जाकर प्रचार कर लोगों को सिखाना पड़ता, कृष्ण भावना मित का प्रचारकों को अपना वैष्णव वेश बनाकर या अन्य वेश में उपदेश देने के लिए आगे बढ़ते जाना चाहिए, ऐसे प्रचार होना चाहिए। इसकी आज के श्लोक में 8 नंबर श्लोक में हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्लाद जब गुरुकुल में वापस आ गया, अभी पहुंच गया कहाँ संधमर्क की गुरुकुल में आ गया, तभी ने संधमर्क ने बड़े प्रह्लाद महाराज को धमकाए नहीं कुछ गुस्से होकर ऐसे, एक तो एक सम्राट के पुत्र है तो हिरण्यकशिपु के पुत्र है तो उसके प्रति कोई ऐसा ही कठोर भाषा बोलना भी वो साहस नहीं करते थे, लेकिन ऐसा ही उसके प्रति बड़े प्रेम से बड़े मीठे शब्द से इसको बातचीत करने लगे। तो उन्होंने अत्यंत मृदु वाणी तथा स्नेह भरे शब्दों से उससे इस प्रकार पूछा है, श्लक्ष्मया वाचा समुपृच्छन् सामभि, सामभि अत्यंत अनुकूल शब्द से है, साम बहुत अनुकूल शब्द से उसको स्नेह भरा श्लक्ष्मया अर्थात अत्यंत नम्रता पूर्वक समपृच्छन्त प्रश्न पूछा, पूछे क्या पूछे, अगला दोनों श्लोक में इसके बारे में कहा जाएगा, 9 और 10 नंबर श्लोक दो श्लोक में और मैंने ये प्रश्न क्या पूछे हैं बताएगा, 11 नंबर श्लोक में फिर प्रह्लाद महाराज की उत्तर आएगा। तो इस प्रकार तो इन्होंने बालक को धमकाए नहीं, डराए नहीं, उसको कुछ कठोर शब्द नहीं बोले, बड़े इसको शांत किए और बड़े मीठे शब्द से इसको क्या जिज्ञासा किए, इसमें भी खाली कहे कि जिज्ञासा किए। तो इसके अगला दोनों श्लोक में क्या जिज्ञासा किए उसकी चर्चा की जाएगी। तो आज श्री वृंदावन दास ठाकुर जो कि चैतन्य भागवत के रचयिता, जैसे ही चैतन्य महापरचय भगवान श्री कृष्ण के महिमा को वर्णन की गई ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम में, और भागवत की रचना किए कौन, व्यासदेव कृष्ण द्वैपरायण व्यास, तो ये व्यासदेव के अवतार माने जाते हैं कौन, भागवत के बारे में क्या कहे वृंदावन दास, भागवत के बारे में ये कहते हैं कि चारो वेद दधि नवनीत भागवत मंथिले न सुख खाइले न परीक्षित, भागवत के बारे में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये स्वयं व्यासदेव ही व्यासदेव के ही अवतार है। तो कहते कि चारों वेद दधि, जो वेदों हैं ये चारों वेद कैसे हैं, दही दही की जैसे मटका में भरा हुआ दही जैसे, और इसको जो मंथन किया जाता है उसको दंड डालकर उसको मंथन किया जाता तो उसके सारांग स्वरूप में क्या निकलता है? माखन। चारों वेद दधि नवनीत भागवत है, ताजा माखन जो निकल, ये है भागवत। और उसको मंथन किया गया सब चारों वेदों को, सभी वैदिक शास्त्र कौन मंथन किया? मंथी लेना सुक, सुखदेव गोस्वामी मंथन करके ही सारे, यानी मंथी ने मंथी लेना सुक खाई लेना परीक्षित। सारांश रूप में जो माखन है श्रीमद् भागवतम को सारांश रूप में है, वेदों के सारांश के रूप में श्रीमद् वेदांत सूत्र की टीका के रूप में, इसकी प्रामाणिक भाष्य के रूप में श्रीमद् भागवत को दिए, जिसको परीक्षित महाराज खाए पहला, और उसको सब हम सब भी उसी का वही भागवत को ही सेवन करते हैं। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को व्याख्यान करने के लिए इनको व्यासदेव के अवतार माना गया। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु बा चैतन्य नित्यानंद की महिमा को हमें तीन किताबों से विशेष रूप में, कई पुस्तक तो है, तीनों पुस्तक विशेष रूप में चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल, तीनों ग्रंथ से हमको प्राप्त। अन्य ग्रंथ छोटा अन्य ग्रंथ सब है अन्य अन्य लेखकों के द्वारा, भक्ति रत्नाकर और अन्य कई ग्रंथ और है, लेकिन ये तीनों ग्रंथ वृंदावन दास ठाकुर सबसे पहले लिखे हैं। इसके बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर के द्वारा रचना की गई है। तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं इनको व्यासदेव के अवतार के रूप में चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। कृष्ण लड़ा चैतन्य भाई, जहाँ हम चैतन्य चरितामृत को पढ़ के देख सकते, प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। जिस तरह वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया है, उसी तरह ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, जहार सबने नाशे सर्व मंगल। ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य मंगल की रचना की, क्योंकि ग्रंथ का पहले है चैतन्य भागवत का, सब पहला ग्रंथ का नाम क्या था? चैतन्य मंगल। लेकिन बाद में जो फिर कृष्णदास कविराज को समझे चैतन्य चरितामृत लिखने, लेकिन और एक लोचन दास ने भी जो किताब लिखा तो उसका नाम भी वो रख दिए चैतन्य मंगल। अरे लोग दो चैतन्य मंगल कैसे होगा? इसे कहा जाता है कि साधु लोग ने सभी लोग एकाठी बैठ कर इष्ट गोष्ठी करके, फिर उनमें विशेष में वृंदावन दास ठाकुर के जो माता जी है नारायणी देवी, नारायणी चैतन्य रूप चिष्ट भाजन है, तारा गर्भे जन्मिला दास वृंदावन, आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए ये नारायणी मत, ये सभी का मत लेकर वो कहे कि नहीं ये तो व्यासावतार है, कौन अन्य सब साधु लोग कहे कि व्यासदेव जी का अवतार है वृंदावन दास ठाकुर, तो फिर उनकी जो रचना को भी भागवत कहना चाहिए। तो इसको फिर इसका नाम फिर क्या रख दिए? चैतन्य भागवत। इसलिए यहाँ पर चैतन्य मंगल शब्द देखा जा रहा है। कहते कि जहार श्रवण, ये चैतन्य भागवत को जो श्रवण करता है नासे सर्व अमंगल। ये डिवाइन गेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रत्येक दिन चैतन्य भागवत की एक अध्याय पढ़ते थे, उनके ये रूटीन था, प्रत्येक दिन है कहीं भी जाते थे साथ में इनके साथ रहता था चैतन्य भागवत। ये तीनों ग्रंथ भी, तीनों में से सबसे ज्यादा लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? चैतन्य भागवत। क्योंकि चैतन्य चरितामृत भक्तों की जो स्कॉलर है, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, उनके लिए चर्चा करेंगे, इसमें से फिलोसॉफिकल ज्यादा चर्चा की गई है और थोड़ा उन्नत, लेकिन सरल भाषा में बंगाली की गाँव की गाँवली बेंगली भाषा में ये लिखा गया, कौन सा? चैतन्य भागवत। बंगाल के घर घर में चैतन्य भागवत मिलेगा आपको, हैं लोग पढ़ते हैं इसको, बहुत पढ़ने में वो सरल है, समझने भी सरल है। तो इसलिए ये बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है चैतन्य भागवत। और पंचाली छंद में जो लिखे हैं चैतन्य मंगल वो भी बहुत कठिन है, उसको थोड़ा समझना, ग्रामेटिकल नॉलेज जिसको होगा। और चैतन्य चैतन्य में तो बहुत श्लोकों हैं, कई यहाँ से वहाँ दुनिया जगह से उद्धृत करके उन्होंने सब लिखा है। इसको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कहे, प्रभुपाद ने भी कहा चैतन्य चैतन्य पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। चैतन्य भागवत को बहुत सरल भाषा में वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं कहते कि जो चैतन्य मंगल डेली पढ़ता है, चैतन्य भागवत पढ़ता है, उसका सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। चैतन्य निताईर जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। श्री चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सारे महिमाओं को ठीक से समझ सकता है और भगवान कृष्ण की भक्ति के चरम निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। इसको आश्रय करने से चैतन्य भागवत को यदि कोई पढ़े भागवते जत भक्ति सिद्धांतेर सार लिखिया छेन इहा जानी करिया उद्धार। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने श्रील चैतन्य मंगल बा चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य भागवत से प्रामाणिक उदाहरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष और को सार को इन्होंने प्रस्तुत किया है। चैतन्य मंगल सुने जदि पाषाणी जवन सेह महावैष्णव है तत्क्षण। चैतन्य मंगल यदि बड़ा से बड़ा नास्तिक भी श्रवण करता है वह तुरंत महान भक्त बन जाता है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। चैतन्य भागवत को यदि कोई पाषाणी व्यक्ति भी जवन भी यदि पढ़ेगा और सुनेगा वो भी महान भक्त बन जाएगा। मनुष्य रचिते नारे एछे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। इस पुस्तक का विषय में इतनी भव्य है कि लगता है कि मानो श्री वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। नहीं तो साधारण मनुष्य कृष्णदास कहते कि साधारण मनुष्य ऐसा ग्रंथ रचना नहीं कर सकता। ये तो है व्यासावतार, लेकिन साथ साथ प्रकृत में कहते कि प्रकृत में वृंदावन दास के स्वयं वृंदावन दास टक की जगह पर लिखे हैं। वो जो लिख रहे हैं उनकी उनको कौन बता रहा है? वो हृदय से बैठकर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। वो जैसे बोल रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु जैसे बता रहे हैं, ऐसा ये लिख रहे हैं। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार एछे ग्रंथ करिते हो तारिला संसार। मैं वृंदावन दास ठाकुर की चरण कमल पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतिता आत्माओं के उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता था। कौन कह रहे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे ऐसा अद्भुत ग्रंथ वृंदावन दास ठाकुर के अलावा दूसरे कोई लिखने के लिए योग्य नहीं, संभव नहीं दूसरे के द्वारा। नारायणी चैतन्य उचिष्ट भाजन तार गर्भे जन्मिलासी श्रीदास वृंदावन। नारायणी सदा चैतन्य महाप्रभु का झूठन खाया करती थी। श्रील वृंदावन दास ठाकुर उसी के कोख से जन्मे थे। किसकी कोख से? नारायणी देवी। यहाँ प्रभुपाद जी की थोड़ा तात्पर्य है। कवि कर्णपुर द्वारा लिखित गौरव गणेश दीपिका में बतलाया गया कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद कौन कौन थे और उनके पूर्व वे क्या थे। उसके श्लोक 43 में नारायण के विषय में निम्नलिखित उदाहरण है कहा गया है। अंबिकाया स्वसायासिन नामना के शील किलंबिका ಕೃಷ್ಣ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಭುಂಜಾನ ಸೇವಯಂ ನಾರಾಯಣಿ ಮತಾ. ಜಬ್ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಶಿಶು ಥೇ ತಬ ಅಂಬಿಕಾ ನಾಮಕ ಸ್ತ್ರೀನೆ ಉನ್ನೆ ಪಾಳಾ ಥಾ. ಕಿಲಿಂಬಿಕಾ ಉಸ್ಕಿ ಛೋಟಿ ಬಹನ್ ಥಿ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಕೆ ಅವತಾರ ಕೆ ಸಮಯ ಯಹಿ ಕಿಲಿಂಬಿಕಾ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾ ಝುಟನ್ ಖಾಯಾ ಕರ್ತಿ ಥಿ. ಯಹಿ ಕಿಲಿಂಬಿಕಾ ನಾರಾಯಣಿ ಥಿ ಜೊ ಶಿವಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಭಾಂಜಿ ಥಿ ಭಾತಿಜಿ ಥಿ ಭಾಂಜಿ ಲಿಖೆ. ಇದರ ಬಾದ ಮೇ ಜಬ್ ಇಹ ಬಡಿ ಹುಯಿ ಔರ್ ಉಸ್ಕಿ ಶಾದಿ ಹೋಗಿ ತೊ ಉಸ್ಕಿ ಕೋಕ್ಸೆ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಭಕ್ತ ಅಪ್ನಿ ಭಾಗವತ್ ಸೇವಾಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ವಿಖ್ಯಾತ ಹೋತಾ ಹೇ. ಇಸ್ ತರ ಹಮ್ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕೋ ನಾರಾಯಣಿ ಕಿ ಪುತ್ರ ಕಿ ರೂಪ ಮೇ ಜಾನತೆ ಹೇ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ಜಿದಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕುರ್ ಲಿಖತೆ ಹೇ ಕಿ ಉನ್ಕೆ ಪೈತೃಕ ವಂಶ ಕಾ ಕೋಯಿ ಪತಾ ನಹಿ ಹೇ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಉಸೆ ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಭಿ ಕೋಯಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಹಿ ಹೇ. ಯದಿಯು ಕೈ ಜಾಗ ಪರ ಅನ್ಯ ಅನ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಮೇ ಯೇ ಲಿಖಾ ಜಾತಾ ಕಿ ಕಿ ಪ್ರಕೃತ ಮೇ ಉನ್ಕೆ ಪಿತಾಜಿ ಕೌನ್ ಥೇ ನಾ ವೋ ವೈಕುಂಠ ದಾಸ್ ಕೋಯಿ ನಾಮ ಥೇ ಜೊ ಕಿ ಔರ್ ಕಹತೆ ಕಿ ಇನ್ಕೆ ಶಾದಿ ಮಾಲಿನಿ ಕಿ ಗಾಂವ್ ಮೇ ಹಿ ಹುವಾ ಥಾ. ಮಾಲಿನಿ ಕಿ ಜೊ ಪಿತಾಜಿ ಕಿ ಗಾಂವ್ ಥಾ ವಹಿ ಪರ್ ಹುವಾ ಥಾ ಹೇ ಎಸಾ ಭಿ ಉಸ್ಕೋ ಭಕ್ತಿಯಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕುರ್ ಭಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಲೇಕಿನ್ ಕೈ ಅನ್ಯ ಲೋಕ ಕೈ ದೂಸರೆ ಸೋ ಲಿಖೆ ಹೇ. ಲೇಕಿನ್ ಯ ಸಭಿ ಸಭಿ ಆಮೆ ಪ್ರಭುಪಾಜಿ ಕಹತೆ ಆಮಕ್ಕೆ ಇತನೆ ಸಾರ ಪಡ್ನೆ ಕಾ ಜರೂರತ್ ನೀ. ಜೊ ಭಕ್ತಿಯಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕುರ್ ನೇ ಕಹೆ ಹೇ ಬಸ್ ಉಸಿಕ ಆಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರೇ ಕಿ ಇನ್ಕಾ ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಕೋಯಿ ವಂಶ ಕಾ ಸಠಿಕ್ ಪತಾ ನಹಿ ಹೇ. ವೈಕುಂಠ ದಾಸ್ ಬಚ್ ಕೋಯಿ ಕೈ ಕಹತೆ ಕೋಯಿ ಕಹತೆ ಕಿ ಇನ್ಕಿ ಜನ್ಮ ಶಿವಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಘರ್ ಮೇ ಹುವಾ ಥಾ ಔರ್ ಕೋಯಿ ಕಹತೆ ನೀ ಇನ್ಕಿ ಘರ್ ವಹಾಂ ಕುಮಾರ ಹಟ್ಟಿ ಮೇ ಹುವಾ ಥಾ ಬಾತ್ ಮೇ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸನ್ಯಾಸ ಲೇನೆ ಕೆ ಬಾದ ಶಿವಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಬಿರಹ ನಾರದ ಮುನಿ ಕೆ ಅವತಾರ ವೋ ಬಿರಹ ದುಃಖ ಸಹ ನೀ ಉನ್ಕಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಬಿಚ್ ಜೋ ಲೀಳಾಂಕು ಸಬ್ ಯಾ ರಹನೆ ಸೆ ಜಾದಾ ಸ್ಮರಣ ಹೋತಾ ತೋ ಇಸ್ ಯಾ ಛೋಡ್ ಕೆ ಚಲೆ ಗೇ ಕಹಾ ಕುಮಾರ ಹಟ್ ಮೇ ಜೈಕೆ ರಹನೆ ಲಗೆ ಥೆ. ಕೋಯಿ ಕಹತೆ ವಹಾಂ ಕುಮಾರ ಹಟ್ ಮೇ ಹುವಾ ಥಾ. ಲೇಕಿನ್ ಹಮ್ ದೇತೆ ನವದೀಪ ಪರಿಕ್ರಮಾ ಮೇ ಜಾತೆ ಹಮ್ ದೇಖತೆ ಮಾಮಗಾಛಿ ಹೇ ಮೋದೋದ್ರಮ ದೀಪ್ ಮೇ ಮಾಮಗಾಛಿ ಗಾಂವ್ ಆತಾ ಔರ್ ವಹಾಂ ಪರ್ ಭಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕುರ್ ನೇ ಭಿ ಕಹಾ ವೋ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಹೈ ವೃಂದಾವನ ದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ವಹಾಂ ಪರ ಗೌರ ಗೌರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಿ ವಿಗ್ರಹ ಹೇ ಏಕ ಅಲ್ಟರ್ ಮೇ ಕಹತೆ ಕಿ ವೃಂದಾವನ ದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇನ್ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಪೂಜಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ. ಕಿಸ್ಕೋ ಗೌರ ನಿತಾಯ ವಿಗ್ರಹ ಹೇ ಔರ್ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಬಾತ್ ಮೇ ಭಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕುರ್ ನೇ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಇಸ್ಲಿ ವಹಾಂ ಪರ ಭಿ ಕಹತ ವೋ ಉನ್ಕೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಮೇ ಕೋಯಿ ಕಹತೆ ಹೇ. ಕೋಯಿ ಕಹತೆ ಕಿ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ್ ಜೊ ಲೇಖೆ ಥೆ ವೋ ದೇ ಔರ್ ದೂಸರೆ ಗಾಂವ್ ಮೇ ದೇನೂರ್ ಗಾಂವ್ ಮೇ ವಹಾಂ ಪರ್ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ್ ಕ ರಚನಾ ಕಿಯೆ ಥೆ. ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವೃಂದಾವನ್ ದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಆವಿರ್ಭಾವ ಕಹ ಜಾತೆ 1508 ಖ್ರಿಸ್ಟಾಬ್ದ ಮೇ ಆವಿರ್ಭಾವ ಹುಯೆ ಥೆ ಔರ್ ಪ್ರಾಯ 1599 ಮೇ ಇನ್ಕಿ ತಿರುಭಾವ ಹುವಾ ಥಾ. ಆಜ ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ ಯೇ ಆನೆ ವಾಲಾ ಹೇ ಥೋಡಾ ತಿರುಭಾವ ಹುವಾ ಥಾ ಔರ್ ಆಜ ಇನ್ಕಿ ಆವಿರ್ ನೇ ಆಜ ತಿರುಭಾವ ಲೇಕಿನ್ ಆಜ ತೋ ದ್ವಾದಶಿ ನಹಿ ನಾ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆವಿರ್ಭಾವ ಹುವಾ ಥಾ ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ. ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವೃಂದಾವನ್ ದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಬಾರೆ ಮೇ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಕುಛ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಔರ್ ಭಿ ಲಿಖೆ ಹೇ. ವೃಂದಾವನ ದಾಸ ಕೈಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಂಗಳ ತಾಹಾತೆ ಚೈತನ್ಯ ಲೀಳಾ ಬನ್ನಿಲ ಸಕಳ ಸಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಲೀಳಾಕೋ ಕಹ ವರ್ಣನ ಕಿ ಗೈ ಹೇ ವೃಂದಾವನ ದಾಸ ಠಾಕುರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಂಗಳ ಬಾ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ್ ಮೇ ಕಿ ಹೇ. ಸೂತ್ರ ಕರಿ ಸಬ ಲೀಳಾ ಕರಿಲ ಗ್ರಂಥನ ಪಾಛೆ ವಿಸ್ತಾರಿಯಾ ತಾಹಾರ ಕರಿಲ ವಿವರಣ. ಪಹಲೆ ವೋ ಹೆಡಿಂಗ್ ಪಹಲೆ ಲಿಖೆ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ ಇಸ್ಕೋ ಏಕ ಏಕ ಕರಿಕೆ ಪಹಲಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ್ ಮೇ ದೇಖೋಗೆ ಪೂರಾ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಚೈತನ್ಯ ಮಧ್ಯ ತಿನ್ನೋ ಲೀಳಾ ಮೇ ಆದಿ ಲೀಳಾ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ವರ್ಣನ ಕಿ ಜಾಯಿ ಮಧ್ಯ ಲೀಳಾ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ವರ್ಣನ ಹೋಗ ಅಂತ್ಯ ಲೀಳಾ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ವರ್ಣನ ಹೇ ವೋ ಪಹಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇ ಲಿಖೆ ಹೇ. ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಕಹತೆ ಕಿ ಬಹುತ್ ವರ್ಣನ ಕರ್ತೆ 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 ಪಹಲೆ ವೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕು ವರ್ಣನ ಕಿಯೇ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಉನ್ಕೆ ಗುರು ಹೇ ಕೌನ್ ವೃಂದಾವನ ದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಗುರು ಕೌನ್ ಹೇ नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु के डायरेक्ट शिष्य हैं, प्रत्यक्ष शिष्य माना जाते हैं। वृंदावन ठाकुर में, ठाकुर के बारे में गौर गणदेश दीपिका में कहा जाता कि वेद व्यास ये आसित दास वृंदावन अधुना सखाय कुसुमापिड कार्य कार्यवशत समाविशत। वेद व्यास जो थे पहले, जो भागवत की रचना है, सारे वेद वेदांत पुराण और भागवत की रचना रचयिक है, रचना किए थे, तो वही अभी इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को विशेष रूप में लिखने के लिए वृंदा ने व्यासदेव अवतीर्ण के रूप में अवतीर्ण हुई है वृंदावन दास ठाकुर के रूप में। लेकिन अन्य स्थान से ये भी बता जाता कि ये कुसुमा पीड़ा नामक भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे ब्रज में, और वो भी किसी कार्यवशत एक ही शरीर में दोनों की बसती है। किसमें? वृंदावन दास ठाकुर के जो शरीर है तो उसमें दोनों ही व्यासदेव जी भी हैं और कुसुमा पीड़ा नाम की जो सखा सखा वो भी उसमें शामिल, ये भी साक्ष्य रस में, इसलिए ये भी गौर निताय को पूजा करते थे। कौन? वृंदावन दास ठाकुर, उनको ही कृष्ण बल राम वही थे हैं। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैल सही बलराम हैल निताय, इसलिए कृष्ण बलराम के सेवक बा चैतन्य गौर नित्यानंद के सेवक वृंदावन दास ठाकुर भी उनकी सेवा करते थे। और विशेष रूप में गौर निताय के सेवक आगे कौन आए कलना में देखते हैं, गौरीदास पंडित है, वो भी सुबल सखा, सुबल सखा के अवतार, तो वो भी उन्होंने भी गौर निताय की, निताय गौरांग की पूजा, गौर निताय की पूजा की। और हमें इसकन में भी गौर निताय है, अल्टर है हर प्राय सभी मंदिर में है। तो इसी प्रकार चैतन्य निताय रजाते जानिए महिमा, जाते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। चैतन्य और नित्यानंद की महिमा का ठीक ठीक से चैतन्य भागवत से ही जाना जा सकता है, और इसमें कृष्ण भक्ति की सिद्धांत की रहस्य का सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर के चरण पर कोटि नमस्कार करते हैं कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कहते कि चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन, तारो आज्ञाए करो तारो उचिष्ट चरवण। चैतन्य महाप्रभु की लीला के लेखने के लिए व्यासावतार वृंदावन दास ठाकुर अवतीर्ण होकर लिखे हैं, और उसी उन्हीं की आज्ञा में, चैतन्य चरितमृत लिखने के पहले कहते कि मैं उन्हीं की आज्ञा से, किनकी आज्ञा से? वृंदावन दास ठाकुर की आज्ञा से उन्हीं की झूठन खाने जा रहा हूँ। क्योंकि आचार्य लोग ने जो पूर्ववर्ती आचार्य जो विषय में विशेष रूप में टीका टिप्पणी करके गए हैं, तो उसके ऊपर फिर दोबारा ये साधारण तो उसको रिपीट, तो इसलिए प्राय चैतन्य भागवत में जो जो लीलाओं को विशेष में वर्णन नहीं किए हैं वृंदावन दास ठाकुर, जैसे मध्य लीला और अंत्य लीला, तो उसी को विशेष रूप में फिर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। लेकिन तीनों ग्रंथ की जो लिखने के जो सोर्स है वो है, जैसे जब विशेष रूप में जो चैतन्य मुरारी दास की कड़चा, मुरारी गुप्त की कड़चा, जो कि हनुमान के अवतार थे मुरारी गुप्त, उन्होंने डायरी लिखते थे डेली, तो उनको आश्रय करके, उनको आधार करके ही और विशेष रूप में इनके आदि लीला को रचना की गई है। यदि हम नवदीप लीला को ठीक से समझना चाहते तो वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत, इसमें विशेष रूप में आदि लीला के वर्णन जो है, नवदीप लीला को बहुत सुंदर भाव से वर्णन की गई है। और जो दक्षिण भारत की गस्त मध्य लीला में दक्षिण भारत की ब्राह्मण आदि आसो लीला, ये चैतन्य चरितामृत में तथा अंत्य लीला, विशेषकर पुरी में जो लीला किए हैं महाप्रभु की अंत्य लीला, गंभीरा लीला, ये सब चैतन्य चरितामृत से वर्णन की जाती की गई है। इसलिए गौर नित्या जो संकीर्तन लीला को विशेष में गौर नित्यानंद की नवदीप लीला को वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में लिखे हैं। इसलिए यदि नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीला रहते हो हये आदि व्यास। ये बार बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको दोहराते हैं, कहते कि कृष्णदास कविराज नित्यानंद ही किसके कृपा पात्र हैं, नित्यानंद प्रभु की ये कृपा पात्र, नित्यानंद प्रभु की प्रत्यक्ष शिष्य भी है, हैं नित्यानंद की महाराज नित्यानंद प्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य माने जाते हैं वृंदावन दास। वो स्वयं कहते कि शेष शिष्य मतलब अंतिम शिष्य, कोई कहते ही नहीं, वो नम्रता के कारण अपने दैन्यता के कारण वो अपने को ऐसे कहते मैं समस्त शिष्यों में से लास्ट सबसे तुच्छ शिष्य हूँ। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि वही व्यास के अवतार हैं, वही कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद विवाह को वर्णन करने के लिए वही अधिकारी है, वो मैं तो केवल उन्हीं के आदेश लेकर उन्हीं के उचिष्ट उन्हीं के झूठन खा रहा हूं। चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास तार कृपा बिना अन्य न है प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के व्यास वृंदावन दास ठाकुर है, उनकी कृपा नहीं होगा तो कोई भी चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को वर्णन नहीं कर सकता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं इसको कहते चैतन्य चरितामृत के, तो ये तो हम सुने कि चैतन्य चरितामृत में किस प्रकार चैतन्य भागवत की तथा वृंदावन दास ठाकुर की महिमा को वर्णन की गई है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। लेकिन चैतन्य भागवत में भी हम देखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर विशेष रूप में दोनों में कोई भिन्नता नहीं देखते, किसमें गौरांग नित्यानंद। इसलिए चैतन्य भागवत जब प्रारंभ करते हैं ये एक साथ में मंगलाचरण में दोनों को वंदना करते हैं, एक को अलग से नहीं। सबसे पहले वो लिखते कि आजानु लंबित भुजऊ कनका बदातऊ संकीर्तनई कपितरऊ कमलायताख्यऊ विश्वम्भरऊ दिज भरऊ युगधर्म पाड़ऊ वंदे जगत प्रिय करऊ करुणा बताऊ। ये बहुवचन में है, ये एक उद्देश्य नहीं की गई, दोनों ये दोनों ही संकीर्तन के पिता है जनक, कौन कौन गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु, क्योंकि ये दोनों में कोई फर्क, ये कृष्ण बलराम है उनमें क्या फर्क है, केवल कलर सब बलराम के केवल शरीर के कलर में फर्क है हैं। तो इसलिए दोनों को वंदना करते हैं आजानुलंबित, दोनों के गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु दोनों का हाथ बाबू जो भुजा ये कहाँ पर आजानुलंबित घुंटन तक हैं। कनका बदा तो दोनों ही तप्त कांचन गौरांग दोनों के शरीर का कांति संकीर्तन ही कपि, दोनों ही संकीर्तन के ही संकीर्तन में हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन व संकीर्तन करने में लगे हुए हैं, संकीर्तन के जनक है। कमलायताख्य दोनों की आंख कमल पत्ते की पांखुड़े जैसे कमल फूलों की पांखुड़े जैसे है। कमलायताख्य विश्वम भरऊ दोनों ही विश्व को भरण पोषण कर, विश्वम भरऊ दीजा भरऊ दोनों ही ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। विश्वम भरऊ दीजा भरऊ युग धर्म पाड़ऊ ये युग धर्म हरे नाम संकीर्तन की प्रचार करते हैं, पालन कर इसी के माध्यम से जगत को पालन करते हैं। युग धर्म पाड़ऊ वंदे जगत प्रिय करऊ दोनों ही जगत के प्रिय है, गौर नित्यानंद है करुणा बतारू। इसलिए मंगलाचरण के लिखते ही पहला श्लोक में उन्होंने दोनों में कोई भिन्नता नहीं, दोनों को एक साथ स्तुति करते हैं गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु दोनों को साथ में। चैतन्य आते इसके बाद तो फिर नित्य फिर इसके दूसरे श्लोक में उन्होंने गौरांग महाप्रभु को प्रण वंदना करते हैं, नमः त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च स्वभृत्याय स्वपुत्राय सकल त्रायतन इनके सारे पार्षदों को हैं समस्त सेवकों को सभी को एक साथ प्रणाम करते हैं। फिर तीसरे श्लोक में कहते कि अवतीर्ण शोकारुण्य ये दोनों अवतीर्ण हुए बड़े करुणा के अवतार है, सारे बद्ध जीवों के प्रति विशेष करुणा करने के लिए अवतीर्ण शोकारुण्य बहुत हैं करुणा में भरे हुए दोनों अवतीर्ण हुए। परिच्छिन्न सदीश्वर ये स्वयं भगवान है ईश्वर है सड़ई सज्ज पूर्ण ईश्वर है सड़ सड़ई सज्जु ने ಅವತಿನ್ನು ಸುಕಾರುಣ್ಯವು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೋ ಭರತರೂ ಭಜೆ ದೋನೋ ಭಾಯಿಕೂ ಮೇ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಮೇ ವಂದನಾ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ್ ಕಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಲಿಖತೆ ಹೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚಾಂದ ಜಾನ್ ವೃಂದಾವನ ದಾಸ ತಚು ಪದ ಜುಗೆ ಗಾನ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಾಪ್ಟರ್ಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಲಿಖತೆ ಜೈಸೆ ಕಿ ಚೈತನ್ಯ ಚೈತ್ರಾಮೃತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೇ ಚೈತನ್ಯ ಚೈತ್ರಾಮೃತ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಲಿಖತೆ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ಕವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ಕವಿರಾಜ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಲಿಖತೆ ಕಿ ರೂಪ ರಘುನಾಥ ಪದೇ ರಹು ಮೊರ ಆಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕಹೆ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್. ಈ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಕಿ ಉಕ್ತಿ ಹೇ ಚೈತನ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಲೇಕಿನ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ ಮೇ ಸಬ್ ಸಮಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಗೌರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಯಂ ಬೃಂದಾವನ್ ದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಹತೆ ಅಪ್ನಿ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಬಾರ ಮೇ ಕಹತೆ ಕಿ ಅದ್ಯಾಪಿಹ ವೈಷ್ಣವ ಮಂಡಳೆ ಜಾರ ಧ್ವನಿ ಗೌರಾಂಗೇರ ಅವಶೇಷ ಪಾತ್ರ ನಾರಾಯಣಿ. ಆಜ್ ಬಿ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ್ ಕಿ ಮಧ್ಯ ಲಡಾಕಿ ಬೀಸ್ ನಂಬರ್ ಬೀಸ್ ಮಧ್ಯ ಲಡಾಯಿ ಬೀಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೆ ಕಹರೆ 294 ನಂಬರ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಕಹಿ ಅಮ್ಮರಿ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಸೆ ಹೇ ಆಜ್ ಬಿ ಉನ್ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕಾ ವರ್ಣನ ವೈಷ್ಣವ ಕಿ ಬೀಚ್ ಮೇ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಗೌರಾಂಗರ ಅವಶೇಷ ಪಾತ್ರ ನಾರಾಯಣಿ. ಇನ್ಕಿ ಮಾತಾಜಿಗೂ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಿಗೂ ಈ ಕಹತೆ ಕಿ ಗೌರಾಂಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಿ ಪಿಗ್ದಾನಿ ಹೇ ಪಿಗ್ದಾನಿ ಜೈಸೆ ಕೋಯಿ ರಕ್ತ ಹೈ ಸಬ್ ಕುಛ್ ಖಾನೆ ಕ್ಯಾ ಪಾನ್ ಚುಬಾ ಕೇ ಉಸ್ಮೇ ಥುಕ್ತೆ ಹೇ. ಐಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜೋ ಕುಛ್ ಭಿ ಖಾತೆ ಥೆ ತೋ ವೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಜೋ ಭಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಉನ್ಕೆ ಮುಖ ಸೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉನ್ಕಿ ಮುಖ ಸೆ ದೇತೆ ಥೆ. ಉಸ್ ಸಮಯ ನಾರಾಯಣಿ ಛೋಟಿ ಬಚ್ಚಿ ಥಿ 4 ಸಾಲ್ ಕೆ ಸರಾ ಶಿವಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಭಾತಿ ಜಿ ಆ ಮಹಾಪ್ರಭು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಸ್ಕಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಉನ್ಕಿ ಮುಖ ಸೆ ದೇತೆ ಥೆ ಔರ್ ಉನ್ಕಿ ಗರ್ಭ ಮೇ ಕಿಸ್ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ ನಾರಾಯಣ ಕಿ ಗರ್ಭ ಮೇ ಬೃಂದಾವನ್ ದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಜನ್ಮ ಹುವಾ. ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಇನ್ನೊಳೆ ನಾರಾಯಣಿ ಕಿ ಮುಖ ಸೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರಾಕೆ ರೋಲಾ ಕರ್ ದೇಖಾಯೆ ಥೆ ಕಹಾ ಶಿವಾಸಂಗನ್ ಮೇ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೇ ಜಬ್ ಈ ಪಹಲಾ ಜಬ್ ದೇಖೆ ಕಿ ಶಿವಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಬಡೆ ಚಿಂತಿತ್ ಥೆ. ಸಂಕೀರ್ತನ್ ಜಬ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಥಾ ನವದೀಪ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ತಭಿ ಸಬ್ ಪಡೋಸಿ ಲೋಕ ನೇ ಏಕ ಬಾರ ಆಕೆ ಧಮಕಿ ದಿಯೆ ಥೆ ಹೇ ಬೋಲೆ ಕಿ ಶಿವಾಸ್ ತುಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಹಮಕೂ ರಾತ್ ಮೇ ಸೋನೆ ನಹೀ ಥಾ ಯೇ ಕೀರ್ತನ್ ಕ್ಯಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಜಾನತಾ ಹೈ ಹಮ ಕಾಲ್ ಸಬ್ ಗಯೆ ಹಮ ಸಬ್ ಜಾಯೆಂಗೆ ಕಾಜಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಮೇ ಖಬರ್ ದೇ ಚುಕೆ ಹೈ ಹೇ ಅಭಿ ಕಾಜಿ ಆನೆ ವಾಲಾ ಹೈ ತುಮಾರೇ ಘರ್ ಮೇ ಔರ್ ತುಮಾರ ಚಾರಿ ಭಾಯಿಕು ಯಹಾಂ ಸೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕರಿಕೆ ಲೇ ಜಾಯೆಗಾ ತಬ ಚಾರ ಭಾಯಿ ಚಲೆ ಜಾವೋಗೆ ಹಮ ಪೂರೇ ತುಮಾರೇ ಘರ್ ವಾರ ಸಬ್ ತೋಡ್ ತಾಡ್ಕೆ ಸಬ್ ಲೇಗೆ ಗಂಗಾ ಮೇ ಫೇಂಕ್ ದೇಂಗೆ ಹೇ ಇಸ್ಲಿ ಬಡೆ ಚಿಂತಿತ್ ಥೆ. ಇಸ್ಲಿ ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಸುಬಹ ಸುಬಹ ಜೊ ಬೈಠಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಜೊ ಡೇಟಿ ರೂಮ್ ಮೇ ಘುಸ್ ಗಯೆ ಥೆ ಘುಸ್ ಕೆ ನೃಸಿಂಹದೇವ್ ಕು ವಂದನಾ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ ಧ್ಯಾನ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ ಶಿವಾಸ್ ಠಾಕುರ್. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪತಾ ಚಲಾ ಯೇ ಏಸ ಘುಮತೆ ಘುಮತೆ ಗಂಗಾ ಕಿನಾರ ಸಬ್ ಗಯೆ ಶಿವಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಈ ಘರ್ ಮೇ ಸೀಧೆ ಜಾಕರ್ ಡೇಟಿ ಕೆ ರೂಮ್ ಮೇ ಬಾಹರ್ ಸೆ ಬಂದ್ ಕರೆ ಐಸೆ ಬಂದ್ ರಹೆ ಏಕ ಲಾತ್ ಲಗಾಯೆ ಪೂರಾ ದೋನೋ ದರ್ಜಾ ಖುಲ್ ಕೆ ಜಾ ಆವೇಶ ಮೇ ಥೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇ ಕಹಾರೆ ಪೂಜಿಸ್ ಕರಿಸ್ಕಾರ ಧ್ಯಾನ ಜಹಾರೆ ಪೂಜಿಸ್ ದೇಖೋ ಸೇ ವಿದ್ಯಮಾನ್ ಕಿಸ್ಕೋ ಪೂಜಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಕಿಸ್ಕೋ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಅಭಿ ತಕ್ ತೋ ಮುಜೆ ಪಹಚಾನಾ ನಹೀ ಹೈ ಕಿಸ್ಕೋ ಪೂಜಾ ಕರ್ತಾ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್ತಾ ವೋ ಮುಂಹ ಸೇ ದೇಖ್ ತೇರೆ ಸಾಮ್ನೆ ಯೇ ಕಹಕರ್ ತುರಂತ ವಿಷ್ಣು ಖಟ್ಲಿ ಮೇ ಉಠೆ ಔರ್ ವಹಾಂ ಪರ್ ನೃಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಮೇ ಬೈಠ ಗಯೆ ನೃಸಿಂಹ ವೇಷ ಧಾರಣ ಕರ ವಿರಾಸನ ಮೇ ಶಿವಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ದೇಖೆ ವಿರಾಸನ ಮೇ ನೃಸಿಂಹ ಹೇ ದೇಖಕರ್ ವೋ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಹೋ ಗಯೆ ಬೋಲೆ ಜಾನತಾ ನಹೀ ಯೇ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಚಾರ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅವತೀರ್ಣ ಹುವಾ ಹೂಂ ಹೇ ಐಸೆ ಕಹ ಕಿ ಬೋಲೆ ತೂ ವಿಶ್ವಾಸ ನಹೀ ಥಾ ದೇಖೆ ಛೋಟಾ ಜ ಲಡ್ಕಿ ಹೈ ನಾ ತುಮಾರ ಭಾತೀಜಿ ನಾರಾಯಣ ಕು ಮೇ ಹಾಂ ಅಭಿ ರುಲಾ ಕರ್ ದೇಖಾತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೀರ್ತನ ಬಾಕಿ ನಾರಾಯಣ ಖೇಲ್ ರೇ ತೂ ಬೋಲಾ ನಾರಾಯಣಿ ಇದ್ರ ಥೋಡಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ಕೆ ರೋಲಾ ಕರ ಇನ್ಕು ದೇಖಾ ಹಾಂ ಬಹು ಸುಂದರ ವರ್ಣನ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ್ ಮೇ ಹೇ. ತೋ ನಾರಾಯಣಿ 4 ವರ್ಷ ಕಿ ಉನ್ಮತ್ತ ಮನೆ ಅಬೋಧ ಬಾಲಿಕಾ ಹೈ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉನ್ಮತ್ತ ಹೋಗಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಮೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಹದಿ ರೋನೆ ಲಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಆಂಕ್ಸೆ ಅಶ್ವಿ ಹಾಂ ಬಹಕರ ಪೂರಾ ಜಮೀನ್ ಕು ಭಿಗಾನೆ ಲಾಗಿ ಹಾಂ ತಬಿ ಇಸ್ಲಿ ಪಹಲಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಕು ಉನ್ನ ದೇಖಾಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಾರಾಯಣಿ ಕಿ ಉಸಿ ನಾರಾಯಣಿ ಜೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜೋ ಕುಛ ಖಾತೆ ಥೆ ಶಿವಾಸ್ ಅಂಗನ್ ಮೇ ಜಾತೆ ಜೋ ಕುಛ ಉನ್ಕೆ ಸಬ್ ಸಮಯ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಕಿ ಪಾತ್ರಿ ಹೋತಿ ಥಿ ಕೌನ್ ವೋ ಬಚ್ಚಿ ನಾರಾಯಣಿ. और कितनी कृपा पात्र थी महाप्रभु के, क्योंकि एक प्रभुपद कहते कि किलिम्बिका की अवधर स्वयं है, तो अंबिका की बहन किलिम्बिका थी कृष्ण लीला में, तो वहाँ भी खाते थे, नंद भवन में झूठन खाते थे, वो तो वहाँ भी खा रही हैं। तो भी तो इस प्रकार बहुत कुछ वर्णन तो है। आ कहते कि सर्वभूत अंतर्यामी प्रभु गौर चंद्र आज्ञा कैला नारायणी कृष्ण बोली कांद चारि वत्सरे रसई चरित उन्मत हा कृष्ण बोलिया कांदे नाहीं कसंबित अंकवाही पड़े धारा पृथ्वी तले परिपूर्ण हईल स्थल नयने रजले। ये चैतन्य भागवत की वर्णन है। उनकी अश्रु में पूरा पूरा जमीन पर जो जमीन उनके शिवास ठाकुर के अंगन के अंगन पूरा भीग गया। तो वृंदावास ठाकुर कहते कि मैं जो ये चैतन्य भागवत की रचना कर रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं स्पेकुलेशन कर नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे मैं प्रकृति में ये मेरे गुरु का आदेश था। किसके? अंतर्यामी नित्यानंद बलिला कौतुके चैतन्य चरित्र किछु लिखिते पुस्तके। नित्यानंद प्रभु मेरे गुरुदेव अंतर्यामी, और तो गुरु अंतर वो तुरंत मुझे ये आदेश दिया है कुछ चैतन्य चरित्र को वर्णन करने के लिए ग्रंथ के रूप में है, तो इसलिए नित्यानंद स्वरूपेर आज्ञा करिसिरे सूत्र मात्र लिखियामी कृपा अनुसारे। जैसा ही नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई है ऐसे ही सूत्र के आधार सूत्र अनुसार ये संक्षेप में वर्णन किया हूँ। मैं कहाँ अधिकारी हूँ प्रकृत में? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो लिख रहे कि बहुत को बता पूरा वक्ता स्वयं कौन है? वृंदावन दास मुख्य वक्ता श्री चैतन्य। तो कहते कि नित्यानंद मरे गुरुदेव के ताहार आज्ञा आमी कृपा अनुसारे किछु मात्र सूत्र आमी लिखिल पुस्तके सेई प्रभु कलि युगे अवधूत राय सूत्र मात्र लिखी आमी ताहार आज्ञा। कि वही अवधूत राय वो नित्यानंद प्रभु है, और उनके आदेश में केवल उनके आदेश पालन करने के लिए मैं केवल ये चैतन्य चरित्र चैतन्य भागवत लिख रहा हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि वृंदावन के साधु संत सब लोग मुझे आदेश आग्रह किया कि कुछ लिखने के लिए है, और पहले सब डाटा भी सब इनको कौन दिया था? रघुनाथ दास गोस्वामी लाए कि इनको सब डाटा जैसे कहा कि आदिलीला साधारण तो मुरारी दास की कर्चा से, बाद में फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से तथा रघुनाथ दास गोस्वामी जो लेक्चर दे रहे थे प्रत्येक दिन राधा कुंड में उसी को आधार करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे लिखे मध्यलीला अंत्यलीला। तो इस प्रकार ये उनके आदेश लेकर लिखे। कोई आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना अपनी इच्छा से नहीं होता है, नहीं लिखना चाहिए। प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज के आदेश था। किसके? अभय इफ यू हैव मनी प्रिंट बुक्स। प्रभुपाद जी को आदेश था भक्ति सिद्धांत डिवाइन इंग्लिश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, तो इसलिए अपने गुरु के आदेश को लेकर उन लिखे। नहीं तो कोई ऐसा ही मनमानी से कुछ आध्यात्मिक पुस्तक को लिखना नहीं चाहिए। तो कहते कि आगे भी इसमें भी कहे तब प्रभुपाद जी भी कहते जब तक कोई व्यक्ति चार बद्ध जीव के लक्षण से युक्त है, कौन सा? त्रुटि करना, अपूर्ण इंद्रिया, माया के द्वारा मोहित होना और धोखा देने की प्रवृत्ति जब तक व्यक्ति के पास में है, वो कभी भी किसी आध्यात्मिक टॉपिक के ऊपर लिखना नहीं चाहिए। नहीं तो केवल वो भ्रमित करेगा लोगों को आध्यात्म ने जो जगत के, इसलिए मुक्त आत्मा के द्वारा आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा जाता है। तो इस पर वृंदावन ठाकुर बहुत कुछ आगे वर्णन करते हैं चैतन्य भागवत के बहुत सुंदर सरल भाषा में। आप पढ़ जो पढ़ने के लिए इच्छुक है पढ़ सकते हैं। आजकल तो भागवत इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो वो टिप्पणी के साथ टिक्का भी साथ हिंदी में भी मिलता है गौड़ीय मठ में चैतन्य भागवत है। चैतन्य भागवत सरल है समझने के लिए, विशेष रूप में नवद्वीप लीला को, नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु के नवद्वीप के संकीर्तन लीलाओं को जो डिटेल जानना चाहता तो चैतन्य भागवत को अवश्य पढ़ना चाहिए। समय हो चुका है तो इसे और ज़्यादा वर्णन तो बहुत कुछ किया बोला जा सकता है, लेकिन यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। कोई किस प्रश्न है तो उस सकते हैं। कोई किसके प्रश्न है? सो प्रत्येक जीवात्मा अपने अपने प्रारब्ध लेकर आता है, तो उसके प्रारब्ध उसको भोगना पड़ता है, है? तो वो लेके आते हैं, लेकिन साधारण देखते कि ये तो हिरण्यकश्यप के पुत्र होने पर भी प्रहलाद आए शिक्षा उनकी माता कौन कयाधु, वो गर्भ में थे तभी से नारद मुनि के संग मिला है, गर्भ से थे तभी नारायण आते, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर था दोनों ही इनके माता जी जब जन्म तो जन्म के पहले जी महाप्रभु के संग किए हैं, अरे वो नारद मुनि के संग से ही वो भक्त बने प्रहलाद हैं। नारद मुनि ने चाहते थे, ये नारद मुनि की विशेष इच्छा था कि ये जो कयाधु की गर्भ में जो बालक है ये कृष्ण भक्ति करें, विष्णु भक्त बने। एक शुद्ध भक्त की इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं, ऐसा ही तो पहले से ही इन प्रहलाद नित्य पर कर रहे हैं उसे। लेकिन इसलिए उन्होंने जन्म से माँ के गर्भ से ही सब सुने थे, और उनके नारद मुनि की इच्छा था कि इनको सब याद रहे। किसको? दोनों सुनते थे, कयाधु सुनता थे, सुनती थी प्रहलाद, सुनती थी गर्भ में, लेकिन कयाधु तो भूल गई सब। आस्ते आस्ते इसका पति जो वापस आ गए, कौन हिरण्यकशिप आ गए वापस तपस्या से, फिर वो सब भूल गई, लेकिन प्रहलाद को सब याद रख, ये याद रहा। इसी कारण है कि नारद मुनि की ये इच्छा था कि प्रहलाद शिक्षा को सब धारण कर सके, हैं। गुरु की कृपा होती है, अनुकंपा होती है, ये शुद्ध भक्त की जो इच्छा है इसको कृष्ण पूर्ण करते। नारद मुनि की इच्छा था कि प्रहलाद को सब कुछ याद रहे, जो शिक्षा है इसको ग्रहण करे, पूरा हृदयंगम करके रखे। नारद मुनि की इच्छा है तो महान भक्त बने, शुद्ध भक्त की इच्छा था। तो इसी प्रकार जन्म बड़ा बात नहीं है शुक्र जन्म, लेकिन ये जो आध्यात्मिक जन्म वो बड़ा बात है, हैं? जो विशेष शुद्ध भक्त की कृपा होती है फिर महान भक्त बनते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा हुई तो पाश्चात्य जगत में इतने सारे लोग इतने सब माने इनको भी वो भी महान भक्त बने हैं। तो इसलिए गुरु की माने जो एक शुद्ध भक्त की इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं, हैं? ये बड़ा बात है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की